ओम शांति। आप सभी को संध्याकालीन नमस्कार। और आज के दिवस का अंतिम सत्र है, लेकिन हमारे जीवन के लिए बहुत ही मूल्यवान सत्र मैं कहूंगा। वैसे सत्र की शुरुआत या भूमिका से पहले आप सबको देखकर कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि जिक्र जब हीरो का होता है तो नाम आप सब भारत माता के वीरों का होता है। इसलिए मैं चाहूंगा आप सब अपने लिए ही जोरदार तालियां बजा लें, क्योंकि हमारे बीच, हमारे सम्मुख ऐसे वीर बैठे हुए हैं भारत माता के, जो सचमुच देश की रक्षा के लिए, नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपनी नींद का भी त्याग कर देते हैं। तो ऐसे त्यागी, बलिदानी, वीर योद्धा हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं। और एक बहुत अच्छी और खास सी चीज आप लोगों के लिए, ये हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि अलग अलग फोर्सेस के जो जवान हैं वो कितने भी बूढ़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमेशा जवान ही कहे जाते हैं। तो आप सभी जवानों के लिए भी एक बार मैं चाहूंगा अपने लिए आप जोरदार करतल ध्वनि कर लें, क्योंकि आप कभी वृद्ध नहीं होने वाले हैं और हमेशा ही सभी को प्रेरित करने वाले हैं, उत्साहित करने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले हैं। यहां आप सबके चेहरे खिले हुए हैं और SSW ये चाहता है, ब्रह्मा कुमारीज का ये वे, कि आपका चेहरा हमेशा ही खिला हुआ रहे, आप हमेशा प्रसन्न चित रहें। हम भी अपने जीवन में यही चाहते हैं कि मेरे जीवन में कभी कोई तनाव की स्थिति, परेशानियां ना, हमेशा खुशियों के फूल ही खिले रहें। हर एक इंसान ये चाहता है, लेकिन विडंबना ये है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता। हम कलयुग में हैं और कलयुग में हैं तो जीवन में समस्याएं, बातें और परेशानियां तो आती ही हैं। यदि पैर में कांटा चुभा हुआ हो क्या हम खुश रह सकेंगे? परिवार में यदि कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, क्या हम मुस्कुरा सकेंगे? या फिर कार्यक्षेत्र में तनातनी का माहौल है, क्या हमारी खुशी कायम रह पाएगी? जीवन की जो समस्याएं हैं, बातें हैं, परिस्थितियां हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी खुशी को, हमारी मुस्कान को हमसे छीन लेते हैं। यहां आप सब मुस्कुरा रहे हैं और यही मुस्कान हम चाहते हैं कि आप हमेशा साथ बनाए रखें। क्या ये लगता है कि संभव है? कौन कौन ये कहता है कि ये संभव है कि हम हमेशा मुस्कुरा सकते हैं, खुश रह सकते हैं? जरा हाथ उठाएंगे प्लीज। वाह, बहुत सुंदर। 99% हमारे जो भाई बहने जवान यहां बैठे हुए हैं उन सबका ये मानना है कि ये किया जा सकता है, और ये मानसिकता बना के यहां से जाना ये बहुत आवश्यक है। सचमुच यहां रहते हुए हो सकता है आपको ये सहज लग रहा हो, लेकिन आज कुछ ऐसे सूत्रों पर चर्चा इस सत्र में हम करेंगे जिसमें आप जान पाएंगे कि सचमुच ये सहज है और सरल है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम कुछ चीजों का अपने जीवन में ध्यान रखें। यहां भी इस कैंपस में जब कभी भी, जहां कहीं भी आप जा रहे होंगे, देख रहे होंगे लोगों को, सबके चेहरे कैसे दिख रहे हैं आपको? सबके चेहरे कैसे हैं? खिले हुए, प्रसन्न, बिल्कुल लाइट। ऐसा नहीं है कि यहां समस्याएं नहीं आती हैं, यहां बातें नहीं आती हैं, या फिर यहां कार्य का प्रेशर नहीं है, लेकिन उस प्रेशर को फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जीवन में अध्यात्म का एक सुंदर प्रकाश है। अब तक स्पिरिचुअलिटी को हम ये समझा करते थे कि हम मंदिर चले जाएं, मस्जिद चले जाएं, गुरुद्वारे चले जाएं, चर्च चले जाएं, वहां जाकर के थोड़ी देर प्रार्थना कर लें, ध्यान कर लें, या घर में ही ईश्वर का थोड़ा ध्यान कर लें, और यहां तक ही धर्म या आध्यात्म सीमित है, हम ये माना करते थे। लेकिन आज के इस सत्र में आप ये जान पाएंगे कि ये केवल वहां तक सीमित रखने की चीज नहीं है, और लगातार आप सुनते भी आ रहे होंगे कि स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए है। ये हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, और साथ ही साथ जीवन में आने वाली समस्याओं का कैसे निदान हो सकता है, कैसे इसे दूर किया जा सकता है, वो ये चीज हमें सिखाती है। तो ये कला तो हम सभी सीखना ही चाहेंगे ना? नहीं, हम सब चाहेंगे कि ये कला हम भी सीखें, ताकि जीवन में जो आने वाली हमारी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, जो कभी ना कभी हमारे जीवन में एक तनाव की स्थिति ले आती हैं या हमारी मुस्कान को छीन लेती हैं, उस चीज से हम हमेशा के लिए निजात प्राप्त कर लें। बस एक विधि की बात है, एक सुंदर से अप्रोच की बात है। एक ही सिचुएशन के लिए दो लोगों का जो अप्रोच होता है, दो लोग जिस ढंग से उसको फेस करते हैं वो अलग अलग होता है। एक मुस्कुराते हुए से फेस करता है और एक रोते गाते हुए। बीमारी यदि किसी व्यक्ति के पास आ जाए, एक व्यक्ति रोता बिलखता और चिल्लाता है और दूसरा व्यक्ति बहुत शांत मन से उस चीज को, उस पेपर को क्रॉस करता है। बात दोनों के लिए एक ही है, लेकिन हो सकता है उनके देखने का तरीका और नजरिया अलग अलग है। और यही नजरिया, यही तरीका हमें यहां से सीख करके और अपना करके जाना है। आप जानते हैं ये हमारे जीवन में हमेशा घटित होती ही रहने वाली घटनाएं हैं। कई बार ऐसा होता है जीवन में कि जब बातें और परिस्थिति आती हैं तो हम बहुत विचलित हो जाते हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि उस समय आपके पास दो चॉइस हैं, या तो भाग लो या फिर भाग लो। यदि आप भाग लेते हैं उसमें तो आपकी आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं, आप जान पाते हैं, समझ पाते हैं कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी योग्यता है। और वही वो समय होता है जबकि हम अपनी आंतरिक क्षमताओं और योग्यताओं को परख पाते हैं, समझ पाते हैं। साइकोलॉजिस्ट भी ये मानते हैं कि मोर देन 90% जो हमारी पावर्स हैं वो सुषुप्त अवस्था में होते हैं। केवल 8-10% जो हमारी मानसिक क्षमताएं हैं उसे ही हम यूज करते हैं अपने जीवन में, अपनी समस्याओं के निदान में, या फिर अपने आप को जो हम अचीव करना चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए। विचार करें, यदि ये 90% पावर जो सोई हुई हैं उन्हें जागृत कर लिया जाए तो समस्याएं क्या चीज हैं हमारे सामने, हम जो चाहें अपनी लाइफ में अचीव कर पाएंगे। लेकिन बात वही है कि हम इन स्पिरिचुअल पावर्स को, इस स्पिरिचुअल नॉलेज को अपने जीवन में अप्लाई करना सीखें। आप सबने वो कहानी सुनी होगी कि एक कथाकार थे, वो बहुत ही प्रसिद्ध कथाकार थे, दूर दूर से लोग उनके पास कथा सुनने के लिए आया करते थे। एक ग्वालन भी जिसका घर नदी के उस पार था, वो वहां से रोज नदी पार करके आया करते थे और यहां दूध दिया करते थे, पंडित जी को भी, कथाकार को भी, और साथ साथ बहुत सारे जो लोग थे वहां उस गांव में उन लोगों को भी। अब एक दिन कथाकार ये सुना रहे थे कि यदि तुम भगवान का नाम लोगे, ईश्वर का नाम लोगे, राम का नाम लोगे तो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अब वो ग्वालन रोज रोज नदी पार करके आया करती थी, नाव में आया करती थी, उसे नाव का इंतजार करना पड़ता था कि कब वो नाविक आए और मैं यहां से जाऊं, कब वो नाविक आए वहां से मैं यहां। अब इस दिन जब उस कथाकार के मुख से उन्होंने ये सुना कि यदि तुम भगवान का नाम लोगे, ईश्वर का नाम लोगे, तुम्हारा बेड़ा ऐसे ही पार हो जाएगा, तो उसे लगा कि अब मुझे बेड़े की जरूरत नहीं है, अब तो मैं ऐसे ही पार हो सकती हूं। अब रोज रोज वो क्या करने लगी, उस विश्वास, उस आस्था के साथ, उस ज्ञान को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हुए रोज रोज वो नदी पार करके जाने लगे। जब उधर से आती थी तब भी अपने सिर पे मटका रखा और नदी पे चलते हुए इस पार आ जाती थी, इधर से भी सबको दूध दिया करती थी, दही दिया करती थी, यहां से भी क्रॉस कर जाया करती थी। अब उसे लगा कि वाह, मेरे पैसे तो बच रहे हैं, कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी कथा उन्होंने सुनाई थी, क्यों ना मैं अपने गांव के लोगों को भी इससे लाभ पहुंच पाऊं। अब उन्होंने पंडित जी को निमंत्रण दिया कि पंडित जी आप हमारे गांव में चलिए कथा कीजिए। पंडित जी तैयार हो गए, साथ साथ चल पड़े, नदी के किनारे पहुंचे, पूछा नाव कहां है। उस ग्वालन ने कहा नाव की क्या जरूरत है, आपने ही तो कहा था कि जब ईश्वर का नाम लोगे, हाँ, राम का नाम लोगे, तुम्हारा बेड़ा ऐसे ही पार हो जाएगा, मैं तो रोज रोज ऐसे ही जाती हूं आती हूं। उसने कहा अरे ये तो केवल कहने की बात होती है, ये प्रैक्टिकल थोड़ी होता है, नाव मंगाओ। उसने कहा नहीं नहीं मैं तो रोज आती जाती हूं। पंडित जी ने कहा करके दिखाओ। अब वो राम का नाम लेते हुए नदी पे चलने लगी, बीच नदी पे पहुंची और वहां जाकर के आवाज देती है कि पंडित जी आइए। अब वो कथाकार जी, उन्होंने भी सोचा कि मैं भी करके देखता हूं, उन्होंने पैर रखा और पानी के अंदर चले गए। तो कहने का भाव ये है कि हम जो अब तक सुनते सुनाते आए हैं वो उसे केवल वहीं तक, किताबों तक ही सीमित ना रखें, लेकिन प्रैक्टिकली अपने जीवन में ला करके देखें कि ये कितना कार्य करते हैं। और जब आप इस चीज के अनुभवी हो जाएंगे तब आपको लगेगा कि सचमुच जिस स्पिरिचुअलिटी को हमने केवल मंदिरों तक, गुरुद्वारों तक या अपने धर्म ग्रंथों तक सीमित कर दिया था वो वहां तक सीमित रखने की चीज नहीं थी, लेकिन प्रैक्टिकल में अपने जीवन में लाने की चीज थी। और उसी चीज पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके इतने सुंदर अनुभव हैं, हजारों अनुभव हमारे पास हैं जो लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में यूज करके देखा है और उसका रिजल्ट पाया है, पा रहे हैं। बीमारियों के, छोटी से छोटी बीमारी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी तक इसका सुंदर प्रयोग किया लोगों ने और अपनी बीमारियों से मुक्त हो गए। एक मास पहले ही मैं कहीं जा रहा था तो नीचे मुझे शांतिवन, जो हमारा कैंपस है वहां अहमदाबाद के, एक भाई मिले। उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी को गले का कैंसर था और उन्होंने जो स्पिरिचुअल नॉलेज यहां दी जा रही है उसका प्रयोग करके वो अब, जब डॉक्टर ने ये कह दिया था कि ये 6 मास से ज्यादा जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन पिताजी ने इन स्पिरिचुअल नॉलेज को यूज करके अपने आप को पूरी तरह ठीक कर लिया। वो खाना नहीं खा पाते थे लेकिन अब खाना भी खा रहे हैं। और जब डॉक्टर के पास वो गए 6 मास के बाद, तो डॉक्टर ने कहा, अरे तुम, मैं तो सोच रहा था कि तुम भगवान के पास होगे, तुम तो मेरे सामने बैठे हुए हो। और बोला कि सारे दिन तो मेरे सामने ही बैठे रहो, कैसे ये चमत्कार हुआ, तो मुझे ये बताओ। तो कहने का भाव, स्पिरिचुअल नॉलेज को यूज करके कई लोग अपनी बीमारियों से मुक्त हो रहे हैं। कईयों को जिनको डिप्रेशन था, तनाव था, चिंता थी, बहुत सीवियर डिप्रेशन, 15-15 साल, 20-20 साल से वो भी स्पिरिचुअल नॉलेज को यूज करके अपनी डिप्रेशन से मुक्त हो रहे हैं। जिनके पास जॉब नहीं थे वो जॉब प्राप्त कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है स्पिरिचुअलिटी का। हम सोचते थे कि नहीं, स्पिरिचुअलिटी तो केवल वहां तक है, इसे प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जो आपके पास प्रॉब्लम्स हैं उन्हें दूर करने में आप यूज कर सकते हैं। इसके हजारों हजार एक्सपीरियंस हमारे पास आ रहे हैं, चाहे वो जॉब प्राप्त करने का हो, चाहे बच्चे, यदि उनकी कॉन्सेंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर बहुत वीक हो गई है, वो भी 100 out of 100 मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी को यूज करके। बिजनेस में यदि लॉस हो रहा है, बिजनेस में भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है इसको यूज करके, और ये सारी चीजें अनुभव में हमारे पास हैं। और इन सबको लोगों तक पहुंचाने के लिए, जो परमात्मा की तरफ से निमित्त बने, आज हम सबका सौभाग्य है कि वो हमारे बीच आने वाले हैं। परम आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी, मैं मंच पर करतल ध्वनि से उनको आमंत्रित करूंगा, जिन्होंने हजारों लाखों लोगों को अपने जीवन के द्वारा न केवल प्रेरित किया है लेकिन सभी को अध्यात्म के पथ पर चलने के लिए अग्रसर किया है। हम जोरदार करतल ध्वनि से आदरणीय भ्राता जी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदरणीय भ्राता जी को आप टेलीविजन पर देखते होंगे, रेडियो पर भी आप सुनते होंगे, आपकी जो आर्टिकल है पत्र पत्रिकाओं में हम पढ़ते रहते हैं, देश विदेश की आप यात्राएं करते रहते हैं और सभी के जीवन में आध्यात्म का प्रकाश लाते रहते हैं, और चाणक्य अवार्ड से आपको विशेष रूप से सम्मानित किया गया है। ऐसे आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी आज हम सबके बीच हैं। मैं यही कहूंगा कि ईश्वर ने अनमोल रत्न गिनती के बनाए हैं, उनमें से एक खास रत्न आज हमारे बीच आए हैं। तो जोरदार करतल ध्वनि से एक बार पुनः हम आदरणीय भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मैं चाहूंगा कि भ्राता जी आज के इस विषय पर जिस पर मैं आपसे बात कर रहा था, भ्राता जी तो उनके अनुभवों की खान है, मैं चाहूंगा कि कैसे इसकी प्रेरणा आपको प्राप्त हुई और साथ ही ये जो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी है ये कैसे हमारे जीवन में भी अनेकानेक जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करने मददगार हो। मैं चाहूंगा कि इस विषय पर आदरणीय भ्राता जी प्रकाश डालें, पश्चात कुछ प्रश्न आपकी ओर से मेरे पास हैं और आपके पास भी आज सुंदर अवसर है, आपके मन में जो भी प्रश्न है वो भी आप डायरेक्टली भ्राता जी से पूछ सकते हैं। भ्राता जी,
ओम शांति। आनंदित हैं सभी भाई बहने यहाँ, आनंदित हैं, सीख रहे हैं अच्छी अच्छी बातें, सीख रहे हैं, उत्तर थोड़ा ढीला मिल रहा है, सीख रहे हैं ना। जैसे रुपेश भाई बता रहे थे, अनेक बीमारियों में एक छोटी सी चीज का प्रयोग किया गया। मैं तो लोगों को पक्का कराता हूं कि बीमारी तन को है, आपको नहीं। अब आपको यहां ज्ञान मिल गया, मैं कौन हूं, कौन हूं, देह अलग मैं अलग। तो बीमारी तन को है, तन की बीमारियों को मन की बीमारी न बनाओ। और जो लोग इसमें सफल हुए वो सचमुच सफल हो गए। आज भी अभी अभी शाम को एक बहन जो संगम नेर महाराष्ट्र से आई है, मुझे फोन किया कि मुझे कैंसर था, कीमो शुरू हुई है लेकिन मैं बहुत ठीक हूँ, मुझे लगता ही नहीं कि मुझे कुछ हुआ है। मनुष्य मन को बीमार कर लेता है, हमें नहीं करना है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? देखिए, शब्द स्पिरिट से बना है, स्पिरिट आत्मा, जिसमें स्पिरिट है, एनर्जी है, आत्मा, उसको जब हम उसके असली रूप में ले जाते हैं तो इसका नाम है स्पिरिचुअलिटी। आत्मा पीसफुल है, जब हम पीसफुल हो जाते हैं, आत्मा लवफुल है, जब हम बहुत लविंग हो जाते हैं, आत्मा प्योर है, हमारी प्योरिटी ऑफ थॉट्स बढ़ती जाती है, आत्मा बहुत पावरफुल है, हमारा मन बहुत शक्तिशाली होता जाता है, इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। जैसे आप सुन रहे थे, लोगों ने ऐसा सोच लिया ये स्पिरिचुअलिटी शायद मंदिरों में जाना, धर्म को मानना, पूजा पाठ करना, यही है। या आजकल एक और चीज को लोग सोचते हैं कि शायद तंत्र मंत्र से स्पिरिचुअल पावर मिलती है, कभी नहीं, वो सब दूसरी पावर है। स्पिरिचुअल पावर है आत्मा का उत्थान करने वाली, स्पिरिचुअल पावर है हमारे जीवन को प्योरीफाई करने वाली, स्पिरिचुअल पावर है हमारे मनोबल को बढ़ाने वाली और हमें सद्बुद्धि प्रदान करने वाली। तो आप सब अब इस मार्ग पे चल पड़े हैं, आपने कदम रख दिए हैं, कैसा लग रहा है? अब चलते ही रहेंगे, चलते रहेंगे ना। देखिए, कोई भी फील्ड हो, चाहे आपका मिलिट्री का हो, पुलिस फोर्स, CRPF, कोई भी हो, मन जितना बैलेंस में रहता है उतना मनुष्य सफल होता है। मन का बैलेंस, हम बाहर से कितना भी फोर्सफुल्ली काम कर रहे हों, लेकिन मन शांत हो अंदर में, तो हमारे निर्णय परफेक्ट होंगे। और आजकल तो आप जानते हैं मेरे से बहुत ज्यादा ज्यादा युद्ध बुद्धि का ज्यादा रह गया है। शस्त्र तो बाह्य चीज है, बुद्धि जिसकी जितनी परफेक्ट निर्णय ले ले इस समय पर, वही विजयी है। तो स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है कि हम अपनी बुद्धि को बैलेंस्ड कैसे बनाएं, ठीक समय पर ठीक निर्णय बुद्धि ले ले, हम तनाव से मुक्त रहें और अपनी टीम को स्ट्रांग कर सकें। आपके हर फील्ड में इस चीज की बहुत जरूरत है। कहीं आप कमांडर हैं तो आपकी टीम पूरी, आपके नीचे वाले सब कितने यूनाइट हैं। ये नहीं कि आप बड़े ऑफिसर हैं तो आपकी आज्ञा उन्हें माननी है, ये तो नियम है मिलिट्री का, वो तो उन्हें माननी है, लेकिन दिल से वो मान रहे हैं, उन्हें आपको सल्यूट करना है लेकिन दिल से वो आपको सम्मान दे रहे हैं, इसका बड़ा महत्व होता है हर जगह। यदि ऐसा होता है तो मनुष्य अपना सर्वस्व बलिदान करने को तैयार रहता है। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत आपने की है, हमने तो इसके जीवन में बहुत ज्यादा अनुभव कर लिए, कराए, पहले किए फिर कराए, तो देखा अगर मनुष्य अपने मन को बैलेंस्ड रखना सीख ले तो जीवन की सभी बातें सहज हल हो जाती हैं। मेरा नाता स्टूडेंट से बहुत रहता है, युवकों से रहता है, डिप्रेशन वालों से रहता है, इविल फोर्स आजकल काम ज्यादा कर रही हैं संसार में, उन लोगों से भी रहता है। कैसे उन्हें मुक्त किया जाए उन इविल फोर्सेस से, तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव। स्पिरिचुअल पावर, अगर मैं एक लाइन में कहूं व्हाट इज स्पिरिचुअल पावर, तो इट्स नथिंग बट द पावर ऑफ माइंड, मन की शक्ति। मन को पॉजिटिव कर दें, मन को पावरफुल कर दें, ये स्पिरिचुअलिटी है। तो हमें इसको बहुत अच्छा बढ़ाना है। कुछ क्वेश्चंस आए हैं, अब हम उन्हें लेंगे और आपको एक अच्छी लाइट आज मिल जाएगी।
ब्रदर जी, आपने मन पर छोड़ा है तो मैं मन से ही शुरुआत करूंगा। हमारे जो भी यहाँ फोर्स के जवान बैठे हुए हैं, उनके परिवार भी बैठे हुए हैं, बाहर के शत्रुओं के लिए तो बहुत दमखम है और हम इन्हें सैल्यूट भी करते हैं उसके लिए कि बाहर कोई भी आ जाए, सिचुएशन बातें आ जाए, उसके लिए हमेशा तैयार हैं। लेकिन जो ये अंदर के शत्रु, जो मन को कमजोर करते हैं, वो शत्रु कौन से हैं और इन्हें कैसे जीता जाए।
देखिए, मन के शत्रु के बारे में आप लोगों ने एक बात शायद सुनी हो, पहले से ही लोग कहते थे अपोजिशन की सेना कितनी भी पावरफुल हो उसको जीतना संभव है, लेकिन अगर ये अंदर के शत्रु पावरफुल हो जाएं, तो इन्हें जीतना बहुत कठिन होता है। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा, ये मनुष्य के बड़े छुपे हुए सूक्ष्म गहरे अंदर बैठे हुए शत्रु हैं। बाहर के शत्रुओं को तो हम अच्छी तरह पहचान सकते हैं, पर अंदर जो ये पांचों शत्रु बैठे हैं, इनको पहचानना और इन पर विजय प्राप्त करने से संसार में और कोई हमारा शत्रु नहीं रहेगा। तो हम इन्हें भी अपने शत्रु मान लें। क्रोध शत्रु है या नहीं? है ना? नेगेटिव सोचना शत्रु है या नहीं? देखिए, आजकल मेरे पास अगर मैं अपना फोन ऑन कर लूं तो फटाफट फोन एक चीज के ज्यादा आते हैं। युवक लोग फोन करते हैं, बहनें करती हैं, मन की स्पीड बहुत फास्ट हो रही है। हम अपने ही मन से खुद दुखी हो गए हैं, मन को एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं। स्टडी हो चाहे जॉब हो, हम क्या करें? तो मन का निगेटिव होना, जैसे मन अपने ही संकल्पों से अपना शत्रु बन गया है, ये सचमुच हमारे सबसे गहरे अंदर बैठे हुए शत्रु हैं।
वैसे भी कहा गया है कि मन यदि कमजोर है तो परिस्थितियां आपके लिए समस्या बन जाती हैं, और यदि मन मजबूत है, शक्तिशाली है, तो परिस्थितियां आपके लिए अवसर बन जाती हैं। तो यही शायद यहाँ हम सीख रहे हैं कि अपने अंदर की ये जो कमजोरियां हैं, कैसे इन पर विजय प्राप्त करें। लेकिन मन को शक्तिशाली बनाना सचमुच उसके लिए बेहद आवश्यक हो जाता है। दादा जी, एक बात खास जो आपने मन से जुड़ी हुई कही, और ये भी कहा कि आजकल इसी से जुड़ी हुई समस्याएं हमारे पास ज्यादा आती हैं, तो कार्य क्षेत्र में रहते हुए जो हमारे भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी कई बार तनाव अनुभव करते हैं। कार्य का प्रेशर कई बार बहुत ज्यादा होता है, बड़ों का कई बार प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, या कभी ऐसी वो सिचुएशन में है जो बहुत ही ज्यादा उनके लिए तनाव भरा है, तो ऐसे में अपने तनाव को कैसे वो मैनेज करें, कैसे ठीक?
पहली चीज तो मैं कहूंगा, हम जीवन इस ढंग से जीना सीखें कि हर बात हमें तनाव फील ना हो। आपके फील्ड में विशेष रूप से हर चीज को चैलेंज मानकर चलना ये बहुत आवश्यक है। परिवारों में भी अब जो छोटी मोटी बातें आती हैं, उनको चैलेंज मानकर चलना और उन पर विजय प्राप्त करना, उनको क्रॉस कर लेना, ये बहुत जरूरी है। तो कुछ लोग हैं बहुत ज्यादा काम होता है बट नो प्रेशर। मैंने भी इसका अनुभव किया बहुत ज्यादा, बल्कि ऐसा रहता था अब तो मैं ज्यादा काम नहीं करता, पर जब बहुत काम करते थे तो जितना ज्यादा काम है इनर पावर उतनी ही ज्यादा है, तो हर बड़े से बड़ा काम लगता था ये बहुत छोटा है। एक तो हमें अपनी आदत ऐसी बनानी है कि हर चीज को प्रेशर न बना ले। ध्यान देना आप इस बात पर, चाहे वो आपके परिवारों की बात है, चाहे आपके जॉब से रिलेटेड बात है, हर चीज को प्रेशर न बनने दें, क्योंकि दिमाग पर अगर प्रेशर रहता है तो आपकी कार्य शक्ति, आपकी एफिशिएंसी डाउन होती है। ठीक बात है या नहीं? ठीक है या नहीं? प्रेशर नहीं। साथ में मैं ये भी जोड़ देता हूं, घर में भी प्रेशर का माहौल नहीं रखना है। अगर आपके घर में प्रेशर का माहौल है तो समझ लें आप, बच्चों की बुद्धि का विकास नहीं होगा। जिस घर में प्रेशर का माहौल है उस घर में बीमारियां बहुत आ जाएंगी, और जिस घर में खुशी का माहौल है आई हुई बीमारियां और समस्याएं भी भाग जाएंगी। एक तो ये बात ध्यान रखना है। दूसरी चीज, टेंशन में जल्दी जल्दी आ जाना। अगर किसी को ये बात ये आदत पड़ गई हो वो इसे भी ठीक करें। और इनको ठीक करने का तरीका है अपनी इनर पावर्स को पहचानना। हम बहुत पावरफुल हैं, समस्याएं बातें काम कुछ नहीं है हमारे सामने, हम पावरफुल हैं। क्या विचार है आपका? मैंने एक बड़ी बात कही है आपको, क्यों हम पावरफुल हैं बताएंगे कोई? बोलो और बोलो। देखिए मैं एक स्पिरिचुअल चीज ही आपको बताऊंगा, हम भगवान के बच्चे हैं ना, डू यू बिलीव इट, हम भगवान के बच्चे हैं। टाइगर का बच्चा क्या होगा या भेड़िया? भेड़िया भी थोड़ा खतरनाक होता है पर भेड़िया तो नहीं होगा ना। एक टाइगर के बच्चे को देख के 100 भेड़िए भाग जाएंगे। हम ऑलमाइटी के बच्चे हैं, गॉड इज ऑलमाइटी, तो हम कौन होंगे? हम भी पावरफुल हैं। आप रोज सवेरे उठकर 3 बार 5 बार अपने को रिमाइंड करा देना, मैं भगवान की संतान हूं, आई एम मोस्ट पावरफुल, आपकी सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी। जो रुपेश भाई आपको कह रहे थे 90% हमारी शक्तियां सबकॉन्शियस माइंड में है, वो सोई रहती हैं, वो जग जाएंगी। ये याद करते करते मैं बहुत शक्तिशाली हूं, आपकी शक्तियां जगेंगी और तब ये काम, ये जिनको आप प्रेशर समझते हैं, बड़े बड़े चैलेंजेज आपको खेल लगेंगे और टेंशन प्रेशर नहीं रहेगा।
सुंदर सूत्र हमें प्राप्त हो गया, एक बार तालियां तो जरूर जोरदार बजा लें, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि सचमुच बाहरी परिस्थितियां हम पर इतनी हावी हो गई हैं कि हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते। लेकिन यदि अपने आप पर हम फोकस कर लें और अपनी इन शक्तियों को जागृत कर लें तो सचमुच हमारे लिए सब कुछ बहुत सहज, बहुत सरल और बहुत आसान हो जाएगा, और इसकी अनुभूति आप यहां रहते हुए अवश्य कर ही रहे होंगे। दत्ता जी, एक खास बात हमारे जीवन में ये भी आती है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम ये कार्य कर सकते हैं, हमें ये करना चाहिए, या ये एक अच्छी आदत है, हमें इस आदत को अपने जीवन में लाना चाहिए, या ये बुरी आदत है मेरे पास, इस बुरी आदत को मुझे छोड़ना चाहिए। बात मन से ही जुड़ी हुई है, लेकिन हम चाहते हुए भी वो नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे भी आप क्या सुझाव देंगे?
उन्हें वही बात है, ये संसार में बहुत हो रहा है, चाहते हुए न कर पाना और न चाहते हुए हो जाना। आप संसार में हर जगह देखेंगे, हम कई चीज चाहते नहीं वो हो जाती हैं, हम सोचते हैं ये कहां से हो गई, और हम चाहते हैं उसको कभी कभी चाहते हुए स्ट्रांग विल होते हुए भी हम नहीं कर पाते। मैं आपको हनुमान का उदाहरण जरूर देना चाहूंगा। हनुमान जी सागर के किनारे पहुंच गए हैं, उन्हें लंका पार करनी थी कूदकर, लंबा चौड़ा सागर देखकर निराश हुए हैं, मैं इसको पार नहीं कर सकता। फिर क्या हुआ था बताओ?
जामवंत जी ने याद दिलाया,
जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया, हनुमान तुम बहुत पावरफुल हो, तुम महावीर हो, तुम छलांग लगाओगे, सागर को पार कर जाओगे, जरा जोर लगाओ और थोड़ा सा। और हनुमान जी को अपनी शक्तियों की याद आ गई, उनको भी श्राप था कि तुम भूले रहोगे, कोई याद दिलाएगा तो याद आ जाएगा। हम भी अपनी शक्तियों को याद किया करें रोज, तो जैसे जैसे हमारी मन की शक्तियां बढ़ेंगी हम सफल होंगे जीवन में। लेकिन एक बात जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी है मैं आपके ध्यान पे जरूर दिलाऊंगा, कभी कभी बहुत प्रयास करने के बाद भी यदि हम कुछ न कर पाए तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हमें मान लेना चाहिए कि उस कार्य की सफलता का अभी ये उचित समय नहीं है, वेट एंड सी फॉर सम टाइम। कभी कभी मनुष्य परेशान होकर अपने को इतना निगेटिव और निराश कर देता है कि जो उसे सफलता मिलनी चाहिए थी, जो अगले ही कदम पर उसका इंतजार कर रही थी, वो उसको मिस कर देता है। इसलिए कुछ चीजें हरेक के जीवन में ऐसी अवश्य होंगी कि जब हम चाहेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन नहीं हो पाता। उदाहरण मैं देता हूं, बहुत स्टूडेंट्स मेरे पास सीएस और सीए के आते हैं। आज भी एक आया, कहा 5 बार सीएस का एग्जाम दे चुकी हूं, 1 नंबर से रह जाती हूं। सीए वालों का भी यही होता है, जरा सा रह जाता है और क्लियर नहीं हो पाता। मैंने इस लड़की से पूछा, तुम निराश हुई हो क्या, 5 बार दे चुकी हो? थोड़ी सी तो हुई हूं। मैंने उसको विधि बताई, वो विधि मैं आपको बता देता हूं, आपके लिए और आपके बच्चों के लिए भी आप यूज कर लेना। अभी नीचे में था, नीचे से आते हुए भी यहां मैं आया तो एक परिवार मिलने आ गया। गुजरात से युवक था एक, दिख तो लंबा चौड़ा रहा था। मैंने पूछा कौन सी क्लास में हो? 10th में हूँ भाई जी। लिख बहुत बड़ा रहा था, मैं सोचा एमए कर रहा होगा। आयु कितनी? अभी 14 साल ही है। तो उसकी माँ कहने लगी, ये चाहता है पढ़ना लेकिन कर नहीं पाता है, यही क्वेश्चन था। ये बहुत अच्छे मार्क्स लेना चाहता है पर कर नहीं पाता है। मैंने उसे पूछा, अब 10th में कितने मार्क्स तुम एक्सपेक्ट करोगे? तो उसके थोड़े ज्यादा तो नहीं थे, उन्होंने कहा 85 चाहता हूं। 95 चाहते हैं आजकल लोग, 97, 99 वाले भी आते हैं मेरे पास। मैंने कहा 85 चाहते हैं, ओके करो। और जहां तुम सोते हो, विधि आप जान लें, आपके बच्चों के लिए बहुत यूजफुल होगी। मैंने उसको सिखाया कि जहां तुम सोते हो ना, सामने की दीवार पर बड़े कागज पर, कंप्यूटर से आजकल तो प्रिंट होता है, लिख दो एनुअल एग्जाम में मेरे 85% मार्क्स आएंगे। ये लैंग्वेज आएंगे, कंफर्मेशन। और जैसे ही सवेरे आंख खुले उसे देखना और एंजॉय करना कि आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। क्योंकि ऐसे कम से कम 100 एक्सपेरिमेंट मैंने बच्चों से कराए हैं, 12वीं क्लास वालों से विशेष, संपूर्ण सफलता। क्योंकि सवेरे सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव है, जब मनुष्य ने आंख खोली है। आप सब भी इसको कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। सवेरे जब हम उठे हैं, थोड़ा जल्दी उठे, अब आप सब तो जल्दी उठते हैं, आपकी तो परेड शुरू हो जाती है, एक्सरसाइज शुरू हो जाती है, जल्दी जल्दी उठकर और वो विजन सामने ले आए जो आप जीवन में चाहते हैं, और उसमें कॉन्फिडेंस धारण कर लें, ये मुझे मिलेगा ही, चाहे आपके प्रमोशन की बात हो, चाहे और कोई चीज आप प्राप्त करना चाहते हो, सवेरे करेंगे ना 7 दिन तक भी यू विल अचीव। तो इस तरह हम इन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं।
राधा जी ने जो बात कही है, सचमुच स्टूडेंट्स के बहुत सारे हमारे पास एक्सपीरियंस आते हैं। एक बच्चा था जिसे 28 ही उसके मार्क्स आए थे, उसके पेरेंट्स बड़े दुखी थे कि क्या किया जाए। जस्ट रिवर्स होके 82% उसके मार्क्स हो गए, कुछ सुंदर प्रैक्टिसेस जो भ्राता जी बता रहे हैं उससे। लेकिन एक चीज सचमुच ध्यान रखना होता है, इसमें बहुत विश्वास की आवश्यकता होती है। एक बच्चे को ये बताया गया, उसे पूछा गया आप कितने चाहते हैं, उसे कहा गया 75 चाहता हूं, क्योंकि थोड़ा सा डल था। तो जब भाई साहब ने जैसे बताया, वैसे वो भी विजन क्रिएट किया करता था, लेकिन कुछ दिन के बाद आया और उसने कहा कि जब मैं 75 देखता हूं ना, वो रिवर्स हो जाता है, वो 57 हो जाता है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा हूं। उसे बहुत समझाया गया कि नहीं, 75 कोई बहुत कॉन्फिडेंटली अपने अंदर ले जाना, लेकिन बार बार वो रिवर्स हो जाता था। और सचमुच जब उसका रिजल्ट आया तो वो 57 ही हो गया था। इसीलिए ये हमारे मन से जुड़ी हुई और सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई जो भ्राता जी बात कह रहे हैं, सचमुच बहुत गहरी है। इसको बहुत प्रैक्टिकली अपने जीवन में हम अप्लाई करके देखें।
भ्राता जी, पूछने से पहले मैं एक चीज कह दूं आपको, विश्वास का क्या महत्व है। ये बहुत डीप साइकोलॉजी है, ये अंधविश्वास की बात नहीं कि हम ऐसे ही सोच रहे हैं कुछ। जिस चीज में हमारा कॉन्फिडेंस होता है, यहाँ विश्वास के लिए इंग्लिश का बहुत अच्छा शब्द है कॉन्फिडेंस, फेथ नहीं, फेथ अलग चीज होता है, कॉन्फिडेंस, तो हमारी पावर टू रिसीव, ग्रहण करने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। अगर एक व्यक्ति का विश्वास है कि मंदिर से जो पानी मुझे मिलेगा, मंदिर में पानी रखा है मूर्ति के आगे, वो अगर मुझे मिल जाए, मैं पी लूं, तो मेरा कैंसर ठीक हो जाएगा। अगर उसे संपूर्ण विश्वास है और उसे वो मिल जाए, वो पी ले, तो निश्चित है कि उसका कैंसर ठीक होगा। ये विश्वास का महत्व है।
जरूर, इस विश्वास के साथ हम भी आगे बढ़ेंगे। ब्रदर जी, आपने बच्चों की बात कही है, तो कई बार पेरेंट्स जो हैं, बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, तो बच्चों को लेकर के कई बार भले वो अपने कार्य क्षेत्र में हैं, थोड़ा सा चिंतित अवश्य हो जाते हैं यदि बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं है। और आजकल एक बड़ी समस्या है कि बच्चे एडिक्ट हो गए हैं मोबाइल के, कि उसी में लगे रहते हैं या बात नहीं मानते हैं या कहीं गलत रास्ते की ओर बढ़ने लगे हैं। तो लाजमी है कि दूर पेरेंट्स हैं, जॉब में हैं, लेकिन वहां चिंता करते हैं। क्या कर सकते हैं दूर रहते हुए भी और यदि उनके पास हैं तो?
देखिए, चिंता तो होगी क्योंकि ये नया व्यसन है, नया एडिक्शन है। इसकी तो अब से 20 साल पहले किसी ने कल्पना की नहीं थी कि कोई मोबाइल एडिक्शन भी आएगा, कोई नेट एडिक्शन भी आएगा। की थी क्या किसी ने? लोग कहते थे शराब पीने की आदत पड़ गई, व्यसन लग गया, छुड़ाओ। सिगरेट की आदत पड़ गई, व्यसन लग गया, छुड़ाओ। और ये मोबाइल ने ही बच्चों को बुरे संग में भी धकेल दिया है। मोबाइल के बारे में मैं आपको पहले तो एक एग्जाम्पल दूं, आप अपने बच्चों को ये सिखा दें, अगर किसी में ये एडिक्शन हो वो इससे बचे। जापान में एक रिसर्च हुई, बड़े टेबल पर बीच में ये एंड्रॉयड मोबाइल रखा गया और एक फुट की रेंज में 10 अंडे रख दिए गए। 4 घंटे में वो अंडे पत्थर बन गए थे। मोबाइल, ये जापान में ये बात बहुत चर्चित हो गई। वहां आप जाएं तो आपको दिखाई देगा कि लोग मोबाइल का यूज नहीं करते। मोबाइल से बच्चों का ब्रेन श्रिंक होता है, सिकुड़ता है। बहुत ध्यान देना, आजकल माताएं अपनी जान बचाने के लिए बच्चों को मोबाइल थमा देती हैं। तुम खेलते रहो गेम, हमें काम करने दो, और वो मजे से खेलते हैं, उससे उसका बैड इफेक्ट उनके ब्रेन पर आता है। ध्यान देंगे आप सभी। अब माँ बाप को तो अपने बच्चों की चिंता होती है, माँ बाप अपने बच्चों को बहुत योग्य, महान, बुद्धिमान, सफल देखना चाहते हैं, पर ये सब कुछ बच्चों के साथ हो रहा है। कुछ बच्चे तो बहुत एफिशिएंट हैं, बड़े ऑनेस्ट हैं, लॉयल रॉयल हैं, वो तो ठीक करते हैं। लेकिन मैं आपको इसके बारे में सबकॉन्शियस माइंड का एक छोटा सा प्रयोग बताता हूं। आप ये समझ लें कि जिसके बारे में आप चिंता कर रहे हैं, आपसे उनको बैड एनर्जी जा रही है। किसी का बच्चा बुरे संग में है, अब वो उसकी चिंता कर रहे हैं, चिंता के साथ और कुछ भी कर रहे हैं। मेरा बच्चा बिगड़ गया है, अब ये पता नहीं सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, इसका भविष्य कैसा होगा, इससे हमारे परिवार का नाम बदनाम न हो जाए, ये कहीं कोई बुरा काम न कर ले। सोच ले आप, निगेटिव अप्रोच, निगेटिव एनर्जी आपसे बच्चों को जा रही है, उनमें गिरावट आएगी। आप शुरू कर दें सोचना, ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये बहुत समझदार है, बड़ा बुद्धिमान है, ये ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। प्यार भरे वाइब्रेशंस उसको दें, बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं, वाइब्रेशंस दें, उसमें सुधार आएगा, आपकी चिंताएं भी समाप्त हो जाएंगी। तो चिंता तो नेचुरल है, आप अच्छी बातें उन्हें सिखाएं भी, लेकिन अच्छे वाइब्रेशंस देकर उनका भी आप कल्याण कर सकते हैं, खुद भी निश्चिंत हो सकते हैं।
जी, बच्चों के साथ साथ दादा जी, आपने सबकॉन्शियस की बात कही कि हम अपनी उन्नति के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो हम में से हर एक की ये चाहना तो अवश्य होती है कि हम आज जहां कहीं पे भी हैं, वहां से एक स्टेप आगे बढ़ें और आगे बढ़ें और आगे बढ़ें, मतलब सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए शिखर की ओर बढ़ें। तो क्या स्पिरिचुअलिटी हमें इसमें भी मदद करता है कि हम सफलता के शिखर की ओर बढ़ते चलें?
बिल्कुल करता है। मैं आपको अपने यहाँ का उदाहरण देता हूँ। हमारे साथ में दो ऐसे युवक हैं, अब तो वो युवक नहीं रहे, बूढ़े हो गए, 70-70 साल के, एक 60 साल का। एक मेरे साथ आए, उनकी एजुकेशन केवल 7वीं क्लास तक थी। हम लोग यहाँ कल्चर प्रोग्राम किया करते थे, उनकी जो टीचर अमृतसर से आई थी उसने मुझे कहा ये ड्रामे बहुत अच्छे बनाता है, आपको कल्चरल प्रोग्राम में मदद करेगा। मैंने उससे पूछा कितने पढ़े लिखे हो, 7वीं क्लास। मैं सोचने लगा 7वीं क्लास का तक पढ़ा हुआ व्यक्ति वो ड्रामा बनाएगा, क्या अच्छा, क्योंकि मैं ड्रामा लिखता था उन दिनों। तो उसने बनाए, थोड़े थोड़े गीत लिखने लगा। अब देखिए, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति इतने सुंदर गीत लिखने लगा कि उसके गीत रिकॉर्ड हो गए, और कम से कम हमारे यहाँ 300 कैसेट उसके गीतों की रिकॉर्ड हुई। उन दिनों कैसेट का जमाना था ना। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से, राजयोग के अभ्यास से उसके अंदर के टैलेंट्स जागृत हो गए। अब देखिए सूरदास महाकवि हिंदी के कितने पढ़े लिखे थे, बताएंगे कोई? स्कूल का दरवाजा देखा ही नहीं था कभी, लेकिन उनके सूर सागर पर आजकल PhD होती है। एक अनएजुकेटेड व्यक्ति के द्वारा गाया गया सूर सागर, लिखा तो उसे नहीं था, गाता था वो इतना कवित्व से भरपूर है कि उस पर लोग PhD करते हैं, MPhil करते हैं। ये टैलेंट्स राजयोग के बल से हमारे अंदर से जागृत होते हैं। दूसरी कहानी सुनो, अभी हमारा साथी है, हमारे पास किचन में ही है, मैं किचन से रिलेटेड हूँ, तीनों जगह के जो हमारे किचन है बड़े बड़े, अभी नीचे हमारे पास 14,000 लोग हैं, मैं कल से वहीं था, बहुत सुंदर प्रोग्राम चल रहा। हमारे पांडव भवन में वो व्यक्ति है, वो 12वीं क्लास तक पढ़ा हुआ है, और वो आजकल इतना जबरदस्त कवि है, उसने 6,000 गीत लिख दिए हैं और उसके भी बहुत सारे हजार गीत रिकॉर्डेड हैं, बहुत फेमस गीत हैं उसके। ये राजयोग का चमत्कार है। आप सभी राजयोग के अभ्यास से अपनी सोई हुई शक्तियों को जगा सकते हैं, अपने टैलेंट्स को निखार सकते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ कई बहुत अच्छे राइटर हो गए हैं अभी, जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, जिन्होंने हिंदी से MA नहीं किया है, लेकिन बहुत अच्छे लेखक बन गए हैं। तो हमारे अंदर बहुत योग्यताएं हैं, वो केवल पढ़ाई से जागृत नहीं होती, वो स्पिरिचुअलिटी से जागृत होती है। जब हम आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करते हैं, जब हम अपने परमपिता से बुद्धि योग जोड़ते हैं, तो हमारी योग्यताएं जागृत होने लगती हैं। सवेरे उठकर आप एक काम किया करेंगे, जो प्रश्न है मैं उसका डायरेक्ट उत्तर दे रहा हूँ। आपको सफलता चाहिए जीवन में, इसके हमारे पास हजारों अनुभव हैं लोगों के। हम लोगों को केवल ये सिखाते हैं कि सवेरे उठकर, उठते ही पहले 10 मिनट में हमारा सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव होता है। उठते ही पहले 1-2-3 मिनट में आप ये 2 संकल्प कर दें सच्चे मन से, मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूँ और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 3-5 बार कर दें, आपके जीवन में सफलताओं के द्वार खुल जाएंगे। और भी मैं इसमें ऐड कर दूं एक चीज, कभी कभी मनुष्य के जीवन में न चाहते ऑल ऑफ ए सडन विघन आने लगते हैं। हम बहुत कुछ कर रहे हैं, रोज विघन आ रहे हैं, बाइक पे जा रहे थे गिर गए, बिना मतलब कोई बीमारी आ गई, ऑफिस में गए जॉब से ऑफिसर से झगड़ा हो गया, और कोई कार्य करना चाहते थे जो आज तक बहुत अच्छा चल रहा था बाधाएं आने लगी। इन सब को हटाने का बहुत सुंदर तरीका हमने अप्लाई कराया लोगों से। सवेरे उठते ही ये 2 संकल्प करेंगे, मैं बहुत पावरफुल हूँ और विघ्नों से मुक्त हूँ। निर्विघ्न विघ्नों से मुक्त हूं। पांच बार याद कर लो, विघ्न हटते जाएंगे, लाइन क्लियर होती जाएगी। आगे बढ़ने का ये बहुत सुंदर तरीका है कि सवेरे उठकर, थोड़ा जल्दी उठकर, आप अपने माइंड को ऐसे सुंदर विचारों से एनर्जेटिक बना लो, चार्ज कर दो, सफलता के द्वार खुलते जाएंगे।
बहुत सुंदर भट्टा जी, आपने एक सुंदर सा सूत्र दिया है। वैसे भी हम सुना करते थे कि वेल बिगिन इज हाफ डन। यदि सुबह से यदि अच्छी शुरुआत हो जाती, अच्छे विचारों से, कहते भी हैं कि परमात्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, तो संभवतः हम भी सुबह उठ करके जो पहला संकल्प करते हैं उससे ही हमारी सृष्टि रची जाती है। तो इस संकल्प पर जरूर ध्यान दीजिएगा। और मुझे लगता है कि सुबह उठ करके जो आप मेडिटेशन कर रहे हैं उससे आपको बहुत एनर्जी और शक्ति प्राप्त हो रही होगी, और साथ ही इन संकल्पों के माध्यम से आप और भी अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ते चलेंगे। ब्रदर जी, एक खास चीज, ये व्यक्तिगत समस्या की बात मैं करूं तो हम बात कर रहे थे बीमारियों की। आप में से कितने ऐसे हैं जिन्हें घुटनों में, कंधों में, सिर में ऐसा दर्द रहता है, या भी है पर हाथ उठाएंगे? अच्छा, काफी लोग हैं। कितने ऐसे हैं जिन्हें कोई ना कोई छोटी मोटी ऐसी बीमारी रहती ही है या है, वो जरा हाथ उठाएंगे? अच्छा, काफी हैं। तो एक बहुत सुंदर सी बात, भ्राता जी हमें हीलिंग मेडिटेशन बहुत अच्छा कराते हैं, वो हम जरूर चाहेंगे भ्राता जी से करना। भ्राता जी, इस जीवन में जब से हम पैदा हुए हैं अभी भी छोटी मोटी बीमारी लगी ही रहती है, हमारे शरीर में भी, हमारे परिवार में भी किसी ना किसी को। ये जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों के लिए हम दवा तो लेते हैं, लेकिन आजकल स्थिति ऐसी हो गई है कि ज्यों ज्यों दवा की त्यों त्यों मर्ज बढ़ता ही गया। आज एक दवा की दूसरी बीमारी पैदा हो गई। तो इन बीमारियों के लिए आप कैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कराते हैं, क्या करें? और साथ ही हम चाहेंगे कि जो आप हीलिंग मेडिटेशन कराते हैं वो भी जरूर हमारे इन साथियों को कराएं।
देखिए, पहली चीज तो मन को बहुत खुश रखने की कला सीखते जाएं। मन को जितना खुश रखेंगे, एक बहुत सुंदर सीक्रेट आपके ख्याल में रहे, क्या मन की खुशी से होता है। आत्मा यहां बैठी है, उसमें मन है। हम मन से सोचते हैं, जो कुछ हम सोचते हैं उसके वाइब्रेशंस, इनको हम किरणें कहते हैं सिंपल भाषा में, तरंगे, वो पहले हमारे ब्रेन में फैलती हैं। जो भी हम सोच रहे हैं वो पहले ब्रेन में जा रहा है, फिर पूरे शरीर में फैलता है। तो जितना हम खुश रहते हैं, खुशी के वाइब्रेशंस हमारे ब्रेन के लिए बहुत बड़े टॉनिक हैं। इसलिए कहावत है, खुशी जैसी खुराक नहीं। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उसके वाइब्रेशंस ब्रेन को एनर्जेटिक करते हैं। बहुत बड़ा विटामिन मिलता है हमारे ब्रेन को। तो पहले तो अपने को खुश रखना सीखेंगे बीमारियों के लिए। देखिए, सबको ही होती है, मुझे भी रही है, बहुत समय से रही है। यहाँ आबू में रहने के कारण हमारे पास पानी थोड़ा हैवी था पहले, अब तो मिनरल लगाया हुआ है 20 साल से हमने, लेकिन कच्चा पानी और हार्ड वाटर होने के कारण हम लोगों को पेट की बीमारियां हो जाती थी, सबको ही हो जाती थी यहाँ आबू में। तो कुछ ना कुछ चलता रहा, लेकिन एक तो ये प्रैक्टिस कि मैं आत्मा अलग, ये देह अलग, दूसरा बीमारी को मन तक न जाने देना, बहुत खुश रहना। लेकिन धीरे धीरे हमने कुछ और चीजें डेवलप की जो मैं आपको बता देता हूं। उसमें ज्यादा नहीं, केवल दो चीजें। एक है पानी को चार्ज करना, ये वैज्ञानिकों से मैंने सीखा। 10-12 साल पहले मुझे एक क्लिप दिखाई गई, वैज्ञानिकों ने पानी पर काम किया, पानी पर हमारे वाइब्रेशंस का क्या इफेक्ट होता है। तो कई प्रयोग थे, उसमें मैं आपको एक सुना देता हूं। पानी के दो गिलास रखे, एक पे लिख दिया लव, दूसरे पे लिख दिया नफरत। ये भी जापान के वैज्ञानिकों ने किया, अपनी भाषा में लिखा। 12 घंटे पानी रख दिया एक कमरे में, एक टेम्परेचर में, और सवेरे जब पानी को चेक किया तो पाया जिस पे लव लिखा था उसमें गोल्डन क्रिस्टल बन गए, जिस पे नफरत लिखा था उसमें ब्लैक क्रिस्टल, ब्लैक वेव जा गई, बिल्कुल ऐसे लगे डर्टी पानी। जब मैंने ये देखा तो तो मुझे ख्याल हुआ, बस मैंने कहा बंद कर दो, 5 मिनट दिखाया, मैंने कहा जो मुझे चाहिए था हो गया। हमारे शरीर में 70% वाटर है, आप सबको पता होगा, पता हो। देखिए संसार की रचना कितनी सुंदर है, इस धरती पर 70% सागर है, इस देह में 70% वाटर है, और इस स्पेस में भी 70% ही पानी के कण हैं। बहुत गहरी ये सूक्ष्म रिलेशन है। तो 70% पानी है, पानी के गिलास पे नफरत लिखा था, पानी डर्टी हो गया था। जिसके मन में नफरत रहती है उसके अंदर के पानी का क्या हाल होगा, सोच लें सभी। जिसके मन में क्रोध रहता हो, जिसके मन में ईर्ष्या की अग्नि जलती हो, जो निगेटिव रहते हो, जो परेशान रहते हो, जो बहुत चिंता करते हो, उनका सारा अंदर का पानी डर्टी, ये है बीमारियों का कारण। मुझे 5 मिनट की क्लिप देख के समझ आया कि अगर हम पानी को प्योरीफाई कर दें, अगर हम पानी को दृष्टि देकर, पानी पे नजर डालकर कुछ अच्छे थॉट्स उसमें भर दें, तो ये पानी बहुत बड़ी मेडिसिन बन सकता है। तो मैंने इसके प्रयोग पहले बुखार पर कराए, मैंने खुद कराए, बहुत गुड रिजल्ट मिले। ऐसा ऐसा बुखार जो उतर नहीं रहा था फटाफट उतरा। फिर मैंने अभी इसको और डेवलप किया है, क्योंकि मैंने अपने लिए किया। मुझे कोई शरीर में तकलीफ हुई तो मैंने अपने लिए चार्ज करना पानी शुरू किया। अभी अभी एक वैज्ञानिक की रिसर्च बताऊं आपको, तो एक युवक वैज्ञानिक पानी पे काम कर रहा है, उसने एक गिलास पानी को देखते हुए कहा थैंक यू, दूसरे गिलास पानी को देखते हुए कहा आई हेट यू, दोनों में कितना अंतर हो गया वो उसने देखा, उसकी उस पर रिसर्च हुई। तो मैंने सोचा पानी को देखते हुए यानी उस पर दृष्टि डालते हुए हम सुंदर थॉट करें, तो मैंने शुरू किया। ये बात अब से 2-3 मास पहले की है, केवल पानी पर दृष्टि डाली और संकल्प किया यू आर माई गुड फ्रेंड, तुम न होते तो जीवन ही न होता, तुम कितने अच्छे हो, प्यास बुझाते हो, जीवन देते हो हमें। और फिर संकल्प किया मैं बहुत पावरफुल हूं, मैं बहुत पावरफुल हूं। तो आंखों से वाइब्रेशंस पानी में समा गए। लास्ट थॉट किया तुम्हें पीते ही मेरी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, पी लिया, बहुत गुड रिजल्ट। समझ गए ना पानी चार्ज करना। आंखों की तकलीफों में पानी आंखों पे छिड़कना बहुत अच्छे प्रयोग हुए। भोजन को भी इस तरह चार्ज किया जा सकता है। दूसरे प्रयोग कराए हाथों से एनर्जी देना। जिन जिन को भी आप में से घुटने दर्द हैं, सिर दर्द कभी होता है, हाई बीपी होता है, या हार्ट में कोई तकलीफ होती है, आजकल किडनी फेलियर की समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं दुनिया में, उनके लिए, लीवर के लिए आप ये प्रयोग करेंगे, मेरे साथ करें। बैठा लो पहले, बैठा लो, यहीं बैठा लो पहले। आगे आगे पहले बैठा लो यहीं। कोई डॉक्टर तो नहीं सभा में
है? हाँ, डॉक्टर बहन देख रही है। ठीक है, आप सब इधर ध्यान दें, भ्राता जी कुछ बात कह रहे हैं,
आगे आ जाइए।
प्रश्न हम लेने वाले हैं, भाई साहब अपनी बात पूरी कर लें। जी 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 भाई साहब, आप अपनी बात ये बीमारियों पे पूरी करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं।
बोल दो। चलो मैं
रिपीट
कर दूंगा, आ जाइए नजदीक आके बोल दो, मैं रिपीट करूंगा।
आजादी पाई है, फौज में, सॉरी सॉरी, आपने अभी कहा है कि मन को खुश रखना चाहिए, और फौज में एक अंग्रेज लोगों का एक रिवाज 70 साल आजादी होने के बाद भी अभी भी हम पालन कर रहे हैं। फौजी लोग जितने भी बैठे हैं हमसे सहमत रहेंगे, शाम को होते हैं उनको दो पैक दारू चाहिए, और तभी, और जब हम बोलते हैं कि शराब पीना ठीक नहीं है तो उनका वो खुश नहीं रहते हैं। जब दो पैक शाम को दारू पीते हैं तभी उनका मन का खुशी और शांति होती है। तो इस संदर्भ में मैं आप क्या कहेंगे?
अभी सिस्टम को बदलना आपके हाथ में है, आप तो मिलिट्री अधिकारी है ना, आप तो मिलिट्री ऑफिसर है ना।
हाँ, मेरा नाम है ग्रुप कैप्टन टी विष्णु कुमार। हाँ, मैं 32 साल भारतीय वायुसेना में कार्यरत हूँ, और मैं शराब मच्छी मांस मदिरा कुछ सेवन नहीं करता हूँ।
बहुत अच्छा,
जब हम करते
हैं तो ग्रुप कैप्टन तो बहुत बड़े अधिकारी हैं आप।
तो मैंने कहने का तात्पर्य, जब हम बोलते हैं कि ये चीज से आप वायु योद्धा नहीं, आप वायु योद्धा नहीं बनेंगे, आप कमजोर व्यक्ति बनेंगे।
हाँ, यही मैं,
मगर ये बात नहीं समझते हैं। जैसा आपने बोला कि मन को खुश रखनी है, तो ये लोग को ये खुश मन तभी होता है जब ये लोग रात में शाम को दो पैक।
अभी आप ये अभियान चला दो सेना में, आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि भाई इन सब से ये नुकसान है। हाँ ठीक, हाँ नहीं पीते आप भी? हाँ हाँ, बंद हो गई है? नहीं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक, हाँ ठीक, नहीं है नहीं है।
बहुत अच्छी सी बात है कि बिना शराब के भी तनाव मुक्त रहा जा सकता है। इनके लिए, इनकी बात के लिए भी जोरदार एक बार तालियां।
मुझे याद
आ, ये बहुत सुंदर सी बात है।
एक कहा
जी
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत नहीं, आप लोगों ने
द पीपुल आर मोर कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ। यंग जनरेशन हु आर कमिंग इन द आर्म फोर्सेज, दे आर टेकिंग हार्डली 20-30% ऑफ द लिकर, नंबर वन। नंबर टू, दे हैव टू वर्क इन द वेरी वेरी एडवर्स सिचुएशन लाइक ए सियाचिन, लाइक द ग्लेशियर्स, लाइक द एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। That time they may be getting into the habit of the taking the liquor, but it is not now that those they have gone when the Britishers used to force to take the alcohol so that their goal is achieved. This is the thing. Now it is not
ठीक,
there.
ठीक है, बहुत not अच्छा there. हमें भी ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई, और हमारे यहाँ भी एक बहुत अच्छा अनुभव था। यहाँ आबू में मिलिट्री स्टेशन है, तो एक राजस्थान का व्यक्ति जो मिलिट्री में था वो बहुत ज्यादा पीता था। हमारे यहाँ आने लगा पांडव भवन में, उधर उसे पूछा, भाई क्यों इतना पीते हो? तो कहा फ्री मिलती है ना, ये टी से पहले की बात ही है। तो उसने राजयोग सीखा, उसने राजयोग सीखा और बिल्कुल छोड़ दिया। उसका जीवन इतना सुंदर हो गया, अब उसको तनाव दूर करने के लिए या और किसी प्रॉब्लम के लिए उस चीज की जरूरत नहीं रहती। तो बहुत अच्छी बात है, 80 से ये बंद हो गया है, अब वो कल्चर हमारे पास नहीं है। ये बहुत सुंदर न्यूज है। अब मैं कहाँ थे हम, ये तो भूल गए
जी। जी, आप भ्राता जी बीमारियों के ऊपर थे।
अच्छा, बीमारियों
और ये बताने वाले थे कि कैसे आप हील कर सकते हैं।
आप ये बात अभी एक्सपेरिमेंट करिए प्लीज, दोनों हाथ मलिए अपने।
तभी अपने दोनों हाथ मलेंगे
और संकल्प करें मैं बहुत पावरफुल हूँ। तीन बार करें, मैं बहुत पावरफुल, मैं बहुत। अब आप अपने हाथ ऐसे छोड़ दीजिए एंड यू कैन फील द वाइब्रेशन इन योर पाम। नजदीक, दूर नहीं, दूर नहीं, नजदीक करो। फील हो रहे वाइब्रेशंस? ये जो आपने मन में संकल्प किया वेरी पावरफुल, ये पावर हाथों से वाइब्रेट आउट होने लगी है। अब इसको आप अपने घुटनों पे रख दीजिए, एक मिनट रख देंगे, फोकस करेंगे वहीं कि ये एनर्जी हाथों से घुटनों को जा रही है, उसको हील कर रही है। दोबारा कर दीजिए, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत पावरफुल। फिर रख दीजिए, ये एनर्जी देने की विधि है। मैं आपको इसके थोड़े में वंडरफुल अनुभव सुनाऊं। दिल में छेद हो गए थे कईयों के, एनर्जी देने से भर गए। तीन माताओं के इतने सुंदर अनुभव हैं, जो ब्लाइंड हो चुकी थी आंखों को एनर्जी देने से आंखें खुल गई। अब चौथी माता मेरे पास आई थी चार पांच दिन पहले, मैंने सुना है तीन की खुल गई, मेरी भी खुल जाएगी। उसकी भी बंद हो गई थी आंखें, थी उसको जन्म से, जन्मांध नहीं थी वो। तो बहुत अच्छे प्रयोग हुए। किडनी ये पीछे होती है, बहुत अच्छे अनुभव लोगों के हुए। फेलियोर किडनी फिर से स्ट्रांग हो गई, काम करने लगी। माइग्रेन सिर के दर्द और हाई बीपी बहुत जल्दी ठीक हुए ब्रेन को एनर्जी देने से। तो ये बहुत अच्छी थेरेपी है। आप कभी थक जाएं, एक मिनट रिलैक्स हो जाएं, सिर पे ऐसे हाथ रख दें, एक दो मिनट में आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। आप ये प्रैक्टिस करना, टेंशन भी रिलीज हो जाएगी, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। इससे हम अपने को ठीक कर सकते हैं। तीसरी बात भी मैं कहना चाहूंगा, रात को जब हम सोते हैं, सोने से पहले भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होने लगता है। सोने से पहले हम बीमारियों के लिए उसमें संकल्प भर दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हाई बीपी है, आप संकल्प दे दें अपने मन को, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है। अगर आपके हार्ट में छेद है, मेरे हार्ट के छेद भर गए हैं। अगर घुटने में दर्द है, मेरे घुटने बिल्कुल ठीक हो गए हैं, मैं बाहर सड़क पर दौड़ रहा हूं। तो सारी रात आपका सबकॉन्शियस माइंड सुप्रीम सर्जन बनकर आपकी बीमारियों को ठीक करेगा। मैक्सिमम हीलिंग एनर्जी होती है रात को हमारे माइंड में। ये तीन चीजों का प्रयोग करके बहुत हेल्दी लाइफ आप जी सकते हैं, और हेल्दी हो जाएंगे। आप हेल्दी तो रहते ही हैं मिलिट्री वाले, और हेल्दी हो जाएंगे।
जी जी, हमारे सारे जवान स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, और सचमुच हमेशा स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे आपके इन युक्तियों से। अब मैं चाहूंगा कि प्रश्नों की शुरुआत तो हो ही गई है, माइक जहां पे भी है अपना हाथ उठाएंगे। जिन्हें भी प्रश्न करना है तो हमारे वॉलेंटियर्स आप तक आएंगे अपना माइक लेकर के। प्लीज अपना हाथ उठाएं जिन्हें भी प्रश्न पूछना है। हाथ उठाएंगे प्लीज। हाँ भाई साहब, यहाँ ले आए, इस ओर, यहाँ भी दादा पूछने वाले।
सभी आगे आ जाया करें तो
यहाँ आगे की कुछ सोफे खाली हैं जो
हारे। आपकी तो
आपकी आवाज बहुत बुलंद है, प्लीज।
हाँ कॉमन होगी। हाँ बहुत अच्छी बात पूछी आपने, मेरे को भी रही है 10 साल से। मैं अपना अनुभव सुना देता हूँ। यहाँ पैनक्रियाज है, इसको एनर्जी देना, और बहुत अच्छी विधि है। आप 10 बार खाली पेट सवेरे मंडूक आसन कर लीजिए, निश्चित रूप से डायबिटीज समाप्त हो जाएगी। मेरी हो गई है। मंडूक आसन आप जानते होंगे, वज्रासन पर बैठकर दोनों मुट्ठी ऐसे बंद करके यहाँ रख देना है। ये लास्ट रिब होती है इसके नीचे को, और आगे झुकेंगे तो इस पे दबाव पड़ेगा, तो जो डल हो गई है पैनक्रियाज वो एक्टिव हो जाएगी। और इसका एक ही कारण है कि पैनक्रियाज डल हो गए, एक्टिव नहीं रहे, पूरा काम नहीं कर रहे, इंसुलिन का सिक्रेशन ठीक नहीं कर रहे, वो एक्टिव हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। आप ये आप शुरू कर दो। 5 मिनट रोज ये करना है आपको, मंडूक आसन, और एनर्जी दे दो 5 मिनट। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, यहाँ हाथ रखो, एक्टिव हो जाएगा।
तो संकल्प क्या देने हैं जब यहाँ रखे हाथ?
मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, एक ही संकल्प आप अपना लें जीवन में। इसके लिए एक दूसरा संकल्प भी है हमारे पास स्पिरिचुअल लैंग्वेज का, गॉड इज ऑलमाइटी, आई एम मास्टर ऑलमाइटी, मास्टर ऑलमाइटी। ये संकल्प आप करेंगे, हाथों की एनर्जी बहुत अच्छी जाएगी सब जगह, बहुत गुड रिजल्ट हैं। मैंने भी किया है, मेरे भी घुटने दर्द हो गए थे इस बार ठंड में, बहुत अच्छा हुआ।
जी अगला प्रश्न, उन पीछे से पूछने दीजिए प्लीज, आप बैठे। जी
दादाजी नमस्कार। पिछले दिनों दो लोगों से मेरा मिलना हुआ कुछ दिन पहले, जिससे मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली जहां मैं यहां समाधान चाहता हूं कि क्या ऐसा संभव है। उन्होंने बताया कि स्पिरिचुअल शक्ति से कोई व्यक्ति अगर चाहे तो अपने किसी भी परिचित या अपने परिजन या किसी को जानने वाले को, उसको वहां कोई तकलीफ है तो यहां से बैठे बैठे उसको वहां हील कर सकता है, ऐसा संभव है?
हाँ संभव है। मैं बताता हूं, दूसरा पूछ लो, एक ही था। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और स्पिरिचुअल भी है और मैं इसको सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ता हूं। सवेरे आप उस टाइम उठे जब वो व्यक्ति सोया हुआ हो, क्योंकि जब वो व्यक्ति सोया हुआ है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव है। तो 10 मिनट अगर आप कर सके, अब आपने राजयोग सीख ही लिया है, थोड़ा थोड़ा तो सीख लिया ना, आप अभ्यास करेंगे, ऑलमाइटी की एनर्जी मुझे आ रही है यहां और मुझसे उस व्यक्ति को जा रही है, आ रही है, एक सिंपल लैंग्वेज में ऑलमाइटी की शक्तियों की किरणें मुझे आ रही हैं यहां आत्मा को और मुझे आत्मा से एक फाउंटेन की तरह उस व्यक्ति को जा रही है। 10 मिनट ये कर लें और फिर उसको बहुत अच्छे थॉट्स देंगे। अगर उसका मन कमजोर हो गया है तो मन को पावरफुल करने के थॉट, अगर उसकी खुशी चली गई है उसको पुनः खुशी वापस लाने के थॉट्स, अगर उसने होप खो दी है उसे फिर से होपफुल बनाने के थॉट्स। तो थॉट्स भी उसको पावरफुल बनाने हैं और ऐसे वाइब्रेशंस देंगे तो दूसरों को बीमारियां ठीक करने में मदद मिल जाएगी। ये भी बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। हम एक ही साथ अनेकों को भी वाइब्रेशंस दे सकते हैं।
अभी जिस डिस्टेंस हेलिंग की बात हम कर रहे थे वो यही थी जो आपने प्रश्न किया है, दूर बैठे भी किसी को ठीक किया जा सकता है। लेकिन बता जी, एक प्रश्न मेरे मन में है सबकी तरफ से ही कि यदि ऐसे दूर बैठ के ही बिना डॉक्टर के किसी को ठीक किया जा सकता है तो इतने सारे डॉक्टर्स और दवाइयों की क्या जरूरत है? किसी के मन में प्रश्न।
बहुत अच्छा हो, जरूरत न पड़े तो इससे अच्छा और क्या होगा। आपका क्या विचार है, डॉक्टर बढ़ते जाए और बीमारियां बढ़ती जाए? भाई आप पिछले 40 सालों का परिणाम देखो संसार में, डॉक्टरों की संख्या 40 गुना हो गई होगी, हो गई या नहीं 40 साल में, और बीमारों की संख्या 100 गुनी। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है भाई। हम राइट पाथ पर चल रहे हैं तो मंजिल हमें मिलनी अवश्य चाहिए, लेकिन मंजिल नहीं मिल रही है तो मेडिकल प्रैक्टिस के साथ, दवाइयां खाने के साथ, अब मैं दोनों को जोड़ देता हूं, उनका भी काम धंधा चले। कोई मेरे से नाराज न हो जाए कि आप बिल्कुल ठप कर रहे हो हमारा काम, उनका भी काम चले और साथ में वाइब्रेशंस भी दिए जाए तो जो बीमारी एक मास में ठीक होने वाली हो 10 दिन में ठीक हो जाएगी।
शुक्रिया,
ये तो अच्छा है ना, एक मास की बजाय 10 दिन में ठीक हो जाएगी।
सर जी, मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक तो वाइब्रेशन की एनर्जी कितनी देर तक देनी चाहिए, ये नहीं बताया आपने टाइम सर।
10 मिनट।
और ये डेली प्रैक्टिस करनी है?
डेली सेम टाइम, ये भी अंडरलाइन करेंगे।
अच्छा, दूसरा सर क्वेश्चन है, सॉरी मैं दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये जैसे अभी इतना एनवायरमेंट पॉल्यूशन है, फूड पे एडल्ट्रेशन है और सारी चीजें, जैसे एक नेगेटिव पूरी चीजें बताई जा रही हैं कि जीना बहुत आगे आने वाली जनरेशन के लिए तो और मुश्किल हो जाएगा, तो इसका प्रिवेंशन जो है कुछ, मतलब इनसे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में?
बचा जा सकता है, एक तो फिजिकल बातें हैं जो संसार की सरकारें कॉन्फ्रेंसेज करती रहती हैं, भाई ये बैन करो वो बैन करो, उसके बारे में तो आप जानते हैं, कार्बन अधिक से अधिक छोड़ रहे हैं उसको कम किया जाए, वो इंटरनेशनली सभी देश करते हैं, कोई करता है कोई नहीं करता, लेकिन इस पॉल्यूशन को प्योर वाइब्रेशंस देखकर भी ठीक किया जा सकता है। पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया, एक बात तो है कि उसे और न बढ़ाएं, लेकिन जो बढ़ा हुआ है अगर बहुत सारे लोग इस संसार में राजयोग का अभ्यास करें और परमात्मा से प्योर एनर्जी लेकर चारों ओर वाइब्रेट आउट करें तो ये पॉल्यूशन बहुत जल्दी प्योरीफाई हो जाएगा। हम लोगों का ये भी एक सब्जेक्ट है और हम इसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस और कार्य कर रहे हैं। आप भी इसमें सहयोगी बन जाएं।
यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं सभी न केवल पौधे लगाएं लेकिन साथ साथ अपने वाइब्रेशन के साथ साथ भी एनवायरमेंट को बहुत प्योर। कौन कौन करेगा जरा हाथ उठा के अपनी सहमति देंगे कि हाँ हम भी राजयोग के माध्यम से
10 मिनट जाप करें 10 मिनट। और यही विधि है कि सुप्रीम से प्योर एनर्जी आ रही है, उसको आप रंग भी दे सकते हैं और एंजॉय करेंगे। गोल्डन रेज आ रही हैं और मुझसे चारों ओर सारे संसार में फैल रही हैं, प्रकृति को जा रही हैं, एनवायरमेंट प्योरीफाई कर रही है, ये संकल्प करेंगे। यस,
मुझे उस सर्वाइकल के बारे में पूछना था। मेरी वाइफ है, उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है।
देखिए
कोई एक्सरसाइज या कुछ ऐसा?
सर्वाइकल के लिए एक्सरसाइज ही सबसे अच्छी विधि है। थोड़ी मसाज और सर्वाइकल वही करना है क्योंकि यहाँ इतने वाइब्रेशंस देने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। दिए जा सकते हैं पर एक्सरसाइज इसकी सबसे अच्छी विधि है।
थैंक यू
जी। और किन्हीं का प्रश्न है? जब तक वो पूछे ब्रदर जी, इधर इधर इनका पीछे जो प्रश्न था ब्रदर जी, वो एक प्रश्न मैं ऐड करना चाहूंगा। विश्व का भविष्य क्या है, ये कईयों के मन में।
देखिए विश्व का भविष्य तो सचमुच अति सुंदर है और मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी का तो भारत से बहुत प्यार है, हम लोगों का भी भारत से बहुत प्यार है। प्यार कई तरह से काम करता है अपने देश के लिए। आप जिस तरह से जिस फील्ड में हो वहां भी, भारत के औद्योगिक प्रगति के लिए भी, यहाँ इकोनॉमिकली हम बहुत आगे बढ़ जाएं, जैसे प्राइम मिनिस्टर का विजन है हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएं, वो सब भी देश को आगे बढ़ाने वाली बातें हैं। लेकिन मैं कुछ जोर देना चाहता हूं, ये हमारा देश अब बहुत जल्दी, आप ये देख लेंगे 2020 पूरा होने पर 30 तक, ये 10-12 साल समझ ले भारत के होंगे, इसमें भारत टॉप पर पहुंचने वाला है। इकोनॉमिकली भी आप देखेंगे बहुत ज्यादा, और आपकी जो पावर है मिलिट्री पावर, वो तो मैं तो कहता हूं टॉप पर ही है, मैं उसे दूसरा तीसरा नंबर नहीं देता, वो तो टॉप पर ही है। क्यों है मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं इसके पीछे। आप सबकी फोर्स के साथ साथ गॉडली फोर्स भी आपके साथ काम करती है। यू मस्ट बी श्योर, बहुत समय पहले 71 में, आप जानते 71 में क्या हुआ था, हमारी एक ट्रांस मैसेंजर सिस्टर ने एक सुंदर विजन देखा था कि भारतीय सेना जब लड़ने के लिए जा रही है तो उनके पीछे परमात्मा शक्तियां भी पड़ रही हैं, उनको किरणें पड़ रही हैं गॉड्स की ओर से। तो ऊपर से संदेश आया था, नो वन कैन क्रश इंडिया, भारत को कोई हरा नहीं सकता, ये हमें भारत के भविष्य का पता है। तो भारत विश्व गुरु भी बनेगा, ये भारत महान तीर्थ बनेगा आपके देखते देखते, इसमें कोई लंबे चौड़े साल अब नहीं लगेंगे। भारत से ही शांति सत्य ज्ञान संसार में पहुंचेगा और वो दिन दूर नहीं, आप देखेंगे अराउंड 2025 कि भारत की नीतियों को सारा संसार फॉलो करेगा। तो भारत तो स्वर्ग बनने की ओर बढ़ रहा है और हम और आप सब मिलकर इसको गोल्डन दुनिया बनाएंगे।
मतलब हमारे देश का भविष्य बहुत उज्जवल है, श्रेष्ठ है,
बहुत उज्जवल है। भले ही निगेटिविटी भी संसार में है, दोनों चीज बढ़ेंगी, पतन भी और उत्थान भी। पतन समाप्त हो जाएगा, उत्थान ही उत्थान रह जाएगा।
जी अंतिम दो प्रश्न अब हम लेंगे समय को देखते हुए। जी
ओम शांति भाई।
ओम शांति
भाई, मैं एक मेरा एक सवाल है कि जो सोराइसिस का कोई इसके बारे में ट्रीटमेंट है?
किसका?
कोई सोराइसिस?
सोराइसिस जहां भी हो वहां एनर्जी दी जाए और मन तक इस बीमारी को न लाया जाए। देखो मैं एक एक्सपीरियंस आपको शेयर कर दूं, अमेरिका में एक गुजराती माता जिसको घुटनों से नीचे पैरों में सोराइसिस बहुत ज्यादा था और उसे इतनी तकलीफ थी कि बात मत पूछो, ठंड में वो बहुत पेनफुल होता था। उसने लिखा था, न मैं सोती हूँ न सोने देती हूँ। पानी चार्ज करके उसने पैरों को लगाया और पिया, और 40 दिन में उसका सोराइसिस फॉरएवर ठीक हो गया। तो पानी चार्ज करके पिए और लगाए, और जहां हो उस अंग को एनर्जी दे राइट हैंड से, निश्चित रूप से फायदा होगा।
प्रणाम श्रद्धा जी। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, बीमारी ऐसा लगता है कि हमारी ओर ताक लगाए बैठती है। आजकल जो है उम्र के साथ साथ फ्रोजन शोल्डर या टेंडरनाइटिस, और यू कैन से द जेंट्स में जो प्रोस्टेट की बीमारी है, ये काफी ज्यादा आती है। तो फ्रोजन शोल्डर के लिए क्या हम वाइब्रेशन का जो
वाइब्रेशन फ्रोजन शोल्डर में बहुत मदद करेगा, लेकिन आप इसके साथ साथ एक मैं छोटी सी विधि आपको बता रहा हूँ, चाहे खुद कर लें चाहे किसी और से करें। गर्म पानी लें, थोड़ा अच्छा गर्म, नमक डाल लें एक मुट्ठी, और एक मोटा सा नैपकिन लेकर दो ले लें, पानी में डुबोएं, निचोड़े और यहाँ रखें जब तक अच्छी सेक लगे। 10 मिनट इधर कर दें, 10 मिनट इधर, और एक्सरसाइज चालू रखें, कंधे की हल्की रखें, भले ही बहुत हैवी न करें आयु बढ़ने के साथ, मतलब ये मूवमेंट हो। हर व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए, आयु बढ़ने के साथ शरीर में कई टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं, बीमारियां बढ़ जाती हैं। हर जो ज्वाइंट है हमारा, उसमें मूवमेंट हो, ये यहाँ घुटने नीचे मूवमेंट जरूर हो, तो मूवमेंट होने से एनर्जी का फ्लो अच्छा बना रहेगा और अनेक बीमारियों से मुक्त रहेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया भ्रता जी। सचमुच हमारे पास मन में प्रश्न तो कई हो सकते हैं, बातें कई हो सकती हैं। अच्छा, लास्ट भाई साहब सामने बैठे हुए हैं, लास्ट दे दीजिएगा इनको आप। अच्छा, आप दोनों ही एक साथ अपने प्रश्न पूछ लीजिए।
ओम शांति। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे परमपिता सुपर पावर है, शिव बाबा है, तो फिर हम लोग देवी देवता का पूजा क्यों करते हैं?
देवी देवता उसकी पहली रचना है, दे आर नेक्स्ट टू गॉड।
तो देवी देवता जो हम लोग मांगेंगे वो मतलब कि जैसे हम लोग को मिल जाएगा उनसे?
अभी मिल तो जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मिलेगा। क्या मांगना चाहते हैं आप? अभी दिला देते हैं, आपको
जानना चाह रहे
हैं,
जानना चाहते हैं।
हाँ, मिलेगा।
अभी तो मुझे जॉब चाहिए।
मिलेगा। देता सबको सुप्रीम ही है, लेकिन उनके माध्यम से दे देता है, क्योंकि वो उसकी रचना है।
एक और क्वेश्चन, जैसे कि जो भी कोई भी ब्रह्मा कुमारी में आते हैं तो उनको मतलब शादी करने के लिए नहीं बोला जाता है, तो ऐसा मतलब क्या कारण?
देखिए, शादी करें या ना करें ये तो अपनी च्वाइस होती है, लेकिन प्योरिटी राजयोग के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जितनी प्योरिटी होगी मन की एकाग्रता बढ़ेगी। भाई साहब को दे दो।
ओम शांति जी। मैं 92 में हाई एजुकेशनल टूर पे आया था, 92 में, जब मेरी उम्र 23 ईयर्स थी। आज मेरा बेटा मेरे साथ है जिसकी उम्र 21 इयर्स है। मतलब पहले तो मैं बधाई देता हूँ कि मैंने वो पुराना आश्रम आपका वहाँ देखा था,
पांडव भवन।
उस समय वहाँ पर 8-10 कमरे होते थे। आज यहाँ मैं पिछले 2 दिन से हूँ, देख के बड़ी खुशी हुई। इसके लिए आपको मैं साधुवाद देता हूँ कि इतना अच्छा आपने प्रोग्राम किया है और इतना अच्छा सुंदर यहाँ पे एक माहौल है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ।
आपको भी थैंक यू।
दूसरा, मैं हरियाणा पुलिस से हूँ, ACP हेडक्वार्टर फरीदाबाद आजकल पोस्टेड हूँ। 25 साल की मेरी नौकरी हुई है। मेरा एक निवेदन है आपके माध्यम से कि हरियाणा पुलिस में आज सबसे ज्यादा जो बैच चल रहा है ट्रेनिंग का, नए रिक्रूट्स का, वो इस समय पे है।
क्या फिर से?
अब हमारे जो नए रिक्रूट्स हैं, जो सबसे बड़ा बैच है अब तक का,
अच्छा,
वो आज के दिन अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स में चल रहा है। तो मेरा निवेदन है एज ए पुलिस मेंबर होने में, जिस फोर्स का मेंबर हूँ, कि उसमें जितने भी नौजवान साथी आए हैं उनको आपका लेक्चर वहाँ जरूर मिले, ताकि वो पॉजिटिविटी हमारे हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट में भी मिले और एक सुपीरियर का और एक सबोर्डिनेट का अच्छा साथ और अच्छा
संबंध हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस फील्ड में टेंशन भी ज्यादा रहती है, और अगर उनको ये सब चीजें मिल जाएं तो बहुत अच्छा होगा। हम जरूर आपको सहयोग करेंगे। आप जो भी सीनियर्स हैं, जिम्मेदार हैं, उनसे, हमारे सेंटर्स हैं जहां तक हरियाणा में, कॉन्टेक्ट करा दें, तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम करनाल में आप जानते हो सुमन मंजरी आईजी, हाँ वो रिटायर हुई हैं, उन्होंने कई प्रोग्राम कराए थे और बहुत अच्छा रहा है। हम लोग तो तैयार हैं सभी सेवाओं के लिए, वेलकम है, थैंक यू। अब हम तीन मिनट,
शुक्रिया भ्राता जी, हम एक हाथ की ताली से आदरणीय भ्राता जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। आपने बहुत सुंदर ढंग से हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और साथ ही मैं केवल इतना ही कहूंगा अंत में, स्वामी विवेकानंद जी का एक बड़ा ही सुंदर सा प्रसंग आता है। वो काशी की गलियों में घूम रहे थे, जेब में किताबें रखी हुई थी, बंदरों ने सोचा कि जेब में कुछ चने वने होंगे, उनके पीछे पड़ गए। अब स्वामी जी आगे आगे, बंदर पीछे पीछे, स्वामी जी भागने लगे, बंदर भी भागने लगे, स्वामी जी तेजी से भागे, बंदर भी तेजी से भागे। एक गृहस्थी ऊपर से देख रहा था, उसने कहा स्वामी जी भागिए मत, इनका सामना कीजिए। तो स्वामी जी को जैसे जागृति सी हुई, वो भागना छोड़ के पीछे मुड़े, एक योद्धा की तरह खड़े हो गए। जब उनको इस मुद्रा में देखा बंदरों ने, तो वहां से 9-2-11 हो गए। तो हम सबको भी वास्तव में स्पिरिचुअल एक जागृति की आवश्यकता है, जो अंदर मन की शक्ति है, आंतरिक शक्तियां हैं, यदि वो जागृत हो जाती हैं तो जो भी समस्या रूपी बंदर हमारे पीछे भाग रहे हैं वो भी 9-2-11 हो जाएंगे। तो आशा है कि आप सब भी अपने अंदर की स्पिरिचुअल पावर्स को जागृत करेंगे। चलिए उस परम शक्ति परमात्मा को शुक्रिया अदा करने के साथ साथ उनसे मन के तार जोड़ें जो हमारी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने वाले हैं। ओम शांति।